मुअज़्ज़िन सामईन और ग्वांग के सुनने वालों को आदाब। आज सैटरडे 22 मई साल 2010 है। बल्तिस्तान के इलाके अताबाद में पहाड़ों के मुनदम होने से वहां दरियाए सिंध का रास्ता बंद हो गया, तो वहां कई किलोमीटर पानी जमा होने की वजह से बहुत सारे देहात जेराब आ गए और लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पाकिस्तानी हुकाम ने वहां किसी तरीके से कोई इमदादी रिलीफ न दिया। जिस तरीके से मीडिया में दिखाया गया है वो कुछ मुख्तलिफ है, तो इस सिलसिले में जानने के लिए उंजा में जाते हैं कि वहां के मकामी बाशिंदे क्या कहते हैं।
अभी समंदर खान, ऐसा है कि यहाँ पर पानी 4 जनवरी को स्लाइडिंग होकर बंद हुआ था और उसका अभी बहुत सारे देहातों को तकरीबन 32 गिलगित बल्तिस्तान में जो देहात हैं उनकी आबादी के लिए खतरा बना हुआ है। ताल्लुक होता कोई आईनी कोई इंसानी रिश्ता होता तो शुरू ही में इसको वागुजार कर सकते थे और इंसानी जाने और उनकी प्रॉपर्टी को बचा सकते थे। इन्होंने जानबूझकर अभी ये आम आदमी ये समझ रहा है कि हमारे डुबोकर हमारे नाम पर ये अमेरिका और वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लेंगे और वो खुद खा जाएंगे। इसके अलावा इनका कोई यहाँ पर रोल नहीं है। ये हेलीकॉप्टरों में दौरे करते हैं और खवातीन ने आज धरना दिया था और उनके जो मर्द हजरात है, आप सुन रहे हैं ना?
जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बात करें जी।
हाँ, तो 24 घंटे दरिया जहाँ पर बंद हुआ था वहाँ पे लोगों ने 200-300 लोगों ने रात बसर की कंकर पर, तो इंतजामिया को यही कहा कि आपका वजीर आजम से हम ये तवक्कु कर रहे थे कि 5 महीने के बाद हमें कोई रिलीफ देगा, कोई मकान के लिए, कोई जमीनों का जो स्लाइडिंग होकर तबाह हुई है। लेकिन उसने आकर बेनजीर के नाम पर वो कोई देवचा चावल का पकाए और उसका इफ्तिताह किया। उस पर लोग मुश्किल हुए और हुकूमत के जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग हैं वो ये प्रोपोगंडे कर रहे थे कि चंद एंटी स्टेट लोग या हुकूमत मुखालिफ लोग वहाँ पे प्रोपोगंडे करते हैं, बाकी आवाम खुश है। तो उसकी सच्चाई वो खुल गई है, आवाम अभी खुल के बातें कर रहे हैं। तो उसमें
ये थे जनाब अमानुल्लाह साहब उंजा से। अब एक और दोस्त एहसान अली साहब को भी उंजा से सुनते हैं। वहां से ये जानना चाहते हैं कि ये लोग जो मुतासर हुए वहां पर उनके हालात कैसे हैं।
देखिए जनाब, असल मतलब है कि 4 जनवरी 2010 को ये वाकया हुआ है और उस वक्त से अब तक ये 5 महीने और हुकूमत पे जो है पे जो पाकिस्तान के हुक्मरान वो खामोश भरे हुए हैं। यहाँ उन्होंने जो हुकूमत के नाम पे जो ड्रामाबाजी की है गिलगित पाकिस्तान में वो टोटली इस्लामाबाद के वो रिमोट कंट्रोल है। इनके पास कोई अख्तियार कोई पास अपने फैसला करने की कोई हैसियत यहाँ पे इनके पास नहीं है। सब कुछ जो है इस्लामाबाद से हो रहा है। यहाँ अगर कोई बाख्तियार कोई इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार हुकूमत होती तो यहाँ के अपने अवाम के अपने लोगों के मुफाद और उनकी जनाब मसाइल को उनकी मुश्किल को पेश नजर रखे कोई इकदाम उठाती। लेकिन जो पाकिस्तान के हुक्मरान है उनको तो यहाँ के अवाम से बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको यहाँ की सरजमीन चाहे, यहाँ के पहाड़ चाहे, यहाँ के गिलगित चाहे, यहाँ के अवाम से दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल इस मौजूदा इस वाकये ने बिल्कुल सही साबित किया इसको कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को यहाँ के अवाम से यहाँ के लोगों से कोई खतन कोई दिलचस्पी नहीं है। वो या सब पानी में डूब मरे या किसी वजह से जरा वो उनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक खामोश तमाशाई बने रहे। ये कर सकते थे कि इसकी उनको पता था, ऐसा नहीं कि उनको ये जो वो हुआ उसके जिस तरह का वहाँ दरिया बंद ब्लॉक हुआ था वो इतना ऊंचा उनकी उसकी जनाब हाइट थी तो सब उनको पता था कि इसमें इतना गांव को डुबोना है, इतने लोगों को मुतासर करना है और बाद में टाइम बंद की शक्ल अख्तियार करना है, सब उनको पता था। लेकिन इन्होंने जानबूझ के उसको जनाब इसको बने रहने दिया। और یہ جو حالانکہ یہ اس واقعے کے بعد اگر ان میں ذرا بھی عوام سے دلچسپی ہوتی تو یہ انٹرنیشنل کوئی ٹینڈر کال کر کے کوئی بین الاقوامی اچھی کمپنی کو دے کے اس کو فوراً ریلیز کر سکتے تھے. انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. آپ تو بہانے بنا رہے ہیں جناب, یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے, ہم درجہ گین کرنے کے لیے, کبھی ایم کیو ایم کا اپنا وہ کیمپ لگوا رہے ہیں, کبھی خود جناب دورے کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹروں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ٹی وی پہ تصویریں بنوا رہے ہیں, لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ بھی جو کل جو وزیر اعظم وہاں پہ گیا موقع پہ, اس نے جہاں وہاں کچھ بھی نہیں کیا, کوئی موقع پہ ان کو کوئی ریلیف کا اعلان نہیں کیا, ان کے جو ڈیمانڈس تھے ان کو پورا نہیں کیا. تو اس وجہ سے اس کے جا کے فوراً بعد ہی جناب لوگوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے, خواتین نے جناب پروٹیسٹ کیا ہے اور کنڈم کیا ہے وزیر اعظم کے رویے کو, سپاہی کے رویے کو اور اس کے جناب جو ہے جو وہاں جا کے اس نے کیا ہے. دیکھیے بڑی مشکل سے وہ اس نے وہاں کی جو ڈی سی نے ان کو لایا, وہ تو سارے لوگ کے بطور احتجاج وہاں اس جیل پہ جا رہے تھے کہ جناب ہمارے حکمران ہمیں مارنے سے پہلے ہم خود ہی جناب وہاں جا کے اپنے اس سے بیٹھتے ہیں احتجاجن, ہم وہاں پانی جو بھی سرکار ہمارے ساتھ کرتی ہے کریں. یہ بڑی مشکل سے جناب لوکل ایڈمنسٹریشن نے ان کو جناب بنا کے ہم ہفتے کے اندر آپ کے مسائلات کرتے ہیں اگر ان کو وہاں سے لایا ہے. یہ ان کی بوکھلاہٹ بھی نظر آتی ہے, ان کی جناب مس مینجمنٹ بھی ہے ان کی, اور ان کا جو رویہ ہے عوام کے ساتھ اب تک جو رہا ہے وہ اس کی ایک جھلک جو ہے جو پچھلے 63 سال سے ہمارے یہاں کے لوگوں کے ساتھ رویہ ہے پاکستانی حکمرانوں کا, اس کی ایک واضح جھلک اس گندی صورتحال میں ان کا جو رویہ ہے پاکستانی حکمرانوں کا وہ عملاً ابھی لوگوں نے دیکھ لیا.
جی بہت بہت نوازش جناب احسان علی صاحب. یہ تھے ہمارے دوست احسان علی صاحب جو انزا سے آن لائن تھے. جناب احسان علی صاحب یہاں پر ہمارے عبدالحمید خان بھی برسل سے آن لائن ہے, اس سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ عطا آباد انزا میں جو جھیل کی شکل اختیار کی گئی وہاں کی آبادی جو ہے اب اس جھیل میں ڈوب گئی ہے, تو یہ سلسلہ 5 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جاری تھا, تو حکام نے اس پر کیوں توجہ نہ دی؟ جناب عبدالحمید صاب آپ مہربانی کریں گے اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں.
سمندر صاحب بہت بہت مہربانی شکریہ. جناب سمندر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے دوست ایڈوکیٹ احسان علی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ یہ کوئی ہمارے حکمران نہیں ہے, انہوں نے ایک قبضہ کیا ہے سازش کے ذریعے اس علاقے پہ, تو ہم ان کے شہری نہیں ہیں, یہ علاقہ ابھی پاکستان کا کوئی حصہ نہیں بنا ہوا, لہٰذا ہمارا نہ ووٹ ان کو جاتا ہے نہ ہمارے انسانوں سے ان کی کوئی ہمدردی ہے. اس علاقے پہ انہوں نے جو قبضہ جمع رکھا ہوا ہے وہ ہمارے پانی کی وجہ سے, ہمارے وسائل ہے, ہمارے جو اسٹریٹجک جو اہمیت ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تو ان لوگوں نے کچھ یہ جو حالیہ کچھ سالوں میں 3-4-5 سال سے بیرونی ممالک کے اور اپنے سمیت پاکستانی جو وہ بھی بیرونی ہمارے لیے چونکہ ہم اس کے پارٹنی ہیں, اپنے لوگوں کو اور کچھ اور بیرونی ممالک کو انہوں نے بڑے پیمانے پہ لیز اس علاقے کا جو مائنز ہے جو معدنیات تھے ان کے لیز دیے ہیں پہاڑوں کے, یعنی کوئی 2000 سے زیادہ لیز انہوں نے بیرونی ممالک کو دیے ہیں جس میں چائنا بھی شامل ہے. تو پچھلے سال ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جس سے آپ کو صورتحال سمجھ میں آ جائے گی. پچھلے سال ایک ہی جگہ میں ہمارے یاسین میں گندا نامی گاؤں ہے, وہاں چائنیز کمپنی نے جس کو کاپر کا لیز دیا گیا تھا پہاڑ پہ چڑھ کے کوئی 4000 انہوں نے بلاسٹ کیے. ایک جگہ پہ جب 4000 بلاسٹ کیے تو وہاں بھی گلیشیئر پھٹے اور گرے, تو لوگوں کو احساس ہوا, لوگوں کو پتہ چلا, تو اوپر جا کر انہوں نے ان کے سامان نکال کر ان کو پھینک دیا, تو ان لوگوں کو گاؤں والوں کو گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں بھیجا, آج بھی وہ سزا بھگت رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے پورا گلگستان کے کئی جگہوں میں 2000 لیز میں سے کتنے جگہوں پہ انہوں نے کتنے بلاسٹ کیے ہیں, تو یقینی بات ہے کہ ان بلاسٹ کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر ہم اگر کوئی فائرنگ کرتے ہیں تو اس کے ایک رائفل کی آواز اتنی دور تک جاتی ہے, وہاں گلیشیئر جو ہے اسے متاثر ہوتا ہے, تو اتنے انہوں نے بلاسٹ کیے ہیں, تو جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انزا میں جو حالات جو تبدیل ہوئے ہیں, اتنے بڑے ہمارے اونچے پہاڑ ہیں, پہاڑ سارے گر گئے ہیں, یہ ان کی جو مصنوعی جو بلاسٹنگ ہے, جو انسانی جو گڑبڑ ہے, انٹرپشن ہے, جس کی وجہ سے یہ پہاڑ ٹوٹے ہیں. और पहाड़ टूटने के बाद जब पानी जमा हो गया तो वहाँ इन्होंने जो काम का सिलसिला बहुत देर से शुरू किया, पहले काम इन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों का मकसद ये था कि ये पानी जमा होकर रास्ते में जितने लोग हैं उनको बहाएगा, जाकर जो है वो द्यामर के आगे कोहिस्तान तक लोगों को जब बहाएगा, जब दरिया के किनारे लोग नहीं रहेंगे तो उसके बाद उनके लिए पूरे इस एरिया में डैम बनाने का के लिए कोई रुकावट नहीं बनेगी, लोगों की कोई आवाज नहीं होगी तो आसानी से डैम बना सकेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब लोग इतने बहेंगे, जब उनकी जायदादें सब खत्म हो जाएंगी तो वो मजहमत खत्म है। और तीसरी बात यह है कि इनके नाम पे फिर बिरोनी ममालिक से ये इमदाद ले लेंगे, चीखेंगे कि हमें इमदाद दे दो। जब इमदाद मिलेगी तो इनके नाम नहाद जो 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 मिलिट्री है जिस तरह उन्होंने पीओके में जो मुजफ्फरबाद साइड में जिस तरह उन्होंने लूटा है 2005 के अर्थक्वेक के बाद, न सिर्फ इन्हें अरबों की जायदाद है और इमदाद अपनी जेबों में डाल लिया, बल्कि वहाँ लड़कियों को जो बेचारी जो है वो इमदाद के लिए तरस रही थी, फैमिलीज को ले जाकर उन्होंने चक्रों में बेचा, उनकी बेइज्जती की, उनकी बेहरमती की उनके साथ। तो मैं अपने भाइयों से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों से कोई अच्छे की तवक्कु रखना यह तो अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। इसके बजाय अगर कोई इमदाद मिलती है तो डायरेक्ट जो है लोगों को इमदाद मिले, एक बात। दूसरी बात, हमारे लोग जो है कहीं कश्मीरियों की तरह बेवकूफ़ी ना करें, कहीं अपनी इज्जत अपनी अपनी फैमिली को कहीं गरीब है कहीं किसी मजबूरी की वजह से कहीं पाकिस्तानी के हवाले ना करें, क्योंकि वरना इज्जत भी जाएगी सब कुछ चला जाएगा। और ये इंशाल्लाह मैं तवक्कु रखता हूँ कि हमारे लोग बाशूर है, ऐसी बात नहीं करेंगे, अपनी इज्जत का उनको ख्याल है। और आपने देखा होगा कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, वह हेलीकॉप्टर में घूम के उन पर उनका मजाक उड़ाने लगा, तो उसके बाद यानी हमारे हमारी बहनों ने हमारी माओ ने भी एहतजाज किया बड़े पैमाने पे, तो मर्द तो करेंगे ही करेंगे, अब उनको एहसास हो रहा है। और फिर हमारे खिलाफ जो नेशनलिस्ट के खिलाफ जो एक हवा वहा चला रहे थे, ये जो है पाकिस्तान के खिलाफ है, ये है भाई, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है बल्कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान की उस दुश्मनी को हम बता रहे हैं और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस दुश्मनी की वजह से हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम अपने आजाद रहना चाहते हैं। तो ये जो पपेट जिस एहसान साहब ने फरमाया है, जो पपेट उन्होंने वहाँ एक वो बना रखी है नाम नहाद दिखाने के लिए, जिस तरह फिल्मी ड्रामों में होता है कि सो कॉल असेंबली का नाम देके या काउंसिल का नाम देके, इसमें सारे वजीर, पहले एक वजीर उमूर कश्मीर होता था, अब जो है ना इसमें पत्नी कितने वजीर ला के जो असेंबली में बनेंगे, वज़ीर आज़म खुद है, सदर भी खुद इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्ट, फिर आप आर्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपने इलाके में आप कोई कानून साजी नहीं कर सकते हैं। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पाकिस्तान में, उसको अख्तियार है कि अपने अहाते में कोई टैक्स लगाए, कोई टैक्स उठाए, कोई जमीन अलाट करे, कोई जमीन किसी से ले ले। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इस नामनिहाद असेंबली के पास न पहले थी न अभी है, जो सुस्त वहाँ कस्टम से लेके और टैक्स से लेके तमाम सब पाकिस्तानी खुद वहाँ से लेते हैं, खुद लागू करते हैं, हमारे इनके पास कोई कानून साजी का अख्तियार नहीं है। और फिर और जो इलाके में एक ही बताए ना, कौन सा कानून का अख्तियार है, क्या आप इंतजाम अपने हाथ में लेने का कानून साजी आप कर सकते हैं, क्या फौज वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो करती है, जो टेररिस्ट कैंप उन्होंने खोल रखा है, जो ओक और जो सारा उन्होंने गन कर रखा है, जो लूट मार कर रखा है, क्या उसके खिलाफ आप कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो आप क्या कानून साजी कर सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी को गिलबस्तान में बसाने का, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को गिलबस्तान लाने का, ये तो पाकिस्तानी आपके जरिए जो है कर रहे हैं, आपको दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये काउंसिल है किसके, असेंबली है किसके, और फिर ये जो रियलिटी है दयासिन की, जिसको जो हमें तबाह कर रहा, दरिया हुंजा जाके ये गिरेगा दरिया गिलगित पे, दरिया गिलगित आगे जाकर जो फिर दरिया सिंध नहीं गिरेगा, तो वो सारे जो है दरिया सिंध फिर हमारी हमारी प्रॉपर्टी है, जायदादें हमारी तबाह हो रही है, सब हमारा हो रहा है और रियलिटी उस वसत को दे रहे हैं। अभी आपके वसत से मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि 20-25 किलोमीटर जो पानी हुंजा में जमा हो गया है, जिसकी वजह से पूरा मौसम तब्दील हो गया है, वहाँ इतनी बारिशें होती है कि कभी तारीख में नहीं देखी गई, कोई धूप का नाम वहाँ लोगों को जो है नहीं पता चल रहा। और जब 7 डैम बनाएंगे मेगा डैम पाकिस्तानी जो है, एक डैम 120 किलोमीटर से लंबा डैम होगा, जब 6-7 डैम बनाएंगे तो उस इलाके की क्या हैसियत रहेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि खाली गिलगित-बल्तिस्तान खत्म नहीं होगा, बल्कि सेंट्रल एशिया तक, बल्कि इंडिया तक, बल्कि आगे चाइना तक उसके असर जाएंगे, ये सारे इलाके से मुतासर होंगे, पूरा इलाके में जो है एक एटम बम से इतना नुकसान नहीं हो सकता, एटम बम आप गिराएंगे भी उसी इलाके को नुकसान होगा, लेकिन ये जो पानी का जो मसले खड़ा कर रहे हैं डैम बनाने का, ये पूरा सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ एशिया से लेकर सारा तबाह हो जाएगा हमारे इस पानी के उसे। और फिर पाकिस्तानी जो साजिश कर रहे हैं उस इलाके पर कब्जा करने के लिए, हमें खत्म करने करके अपनी फौजें वहां लाने के, चूंकि एक डैम बनाने के लिए, एक डैम की हिफाजत के लिए ये एक डिवीजन फौज रख रहे हैं, मंगला डैम में एक डिवीजन फौज है, त्रिबला डैम में एक डिवीजन फौज है, तो 7 जगह में 7 डैम बनाएंगे, 7 डिवीजन फौज वहां रखेंगे, तो फिर हमारी आबादी तो वैसे भी तबाह होगी बारिशों से, तो क्या उस इलाके का होगा, एक जहन्नम बनेगी।
جناب عبداللہ امین صاحب، وہاں پر امدادی کام کس حد تک تسلی بخش ہے؟
دیکھیں امدادی کام یہ جو ان کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کچھ ہے فوجوں کا، یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو وہ جنرل جو پہلے تھا پی او کے میں جو جس نے لوٹ مار کیا ہے، یہاں بھی اسی کو لایا ہے، ریٹائر ہو کے بھی وہی جنرل ہے، تو ان کے جیبوں میں جائے گی بھائی. ہمارے علاقے کے نام پہ کوئی پیسہ جمع کر کے یہ خود کھائیں گے، بےزتی ہماری ہوگی، ہمیں بیکاری سمجھا جائے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر دنیا کو ہماری مدد کرنا چاہتی ہے تو ڈائریکٹ کرے، ڈائریکٹ ہنزا جائے وہاں لوگوں کی مدد کرے، اس کے بعد آگے جہاں جہاں نقصان ہوگا، جہاں ہمارے لوگ متاثر ہوں گے، ان کو جا کر ڈائریکٹ ان کی کوئی مدد کرے. یعنی پاکستانیوں کے ذریعے نہ ہمیں مدد چاہیے اور نہ وہ مدد کریں گے ہماری.